नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। सरकार ने आज ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन संबंधी नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया। ये 1 मई से प्रभावी होगा। इन नियमों का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करना, लोगों की सुरक्षा करना, वित्त प्रणाली को सुरक्षित रखना, समन्वित प्रवर्तन को सक्षम बनाना और उपयोगकर्ता के अधिकारों को बनाए रखना है। तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तमिलनाडु में 5,73,43,000 से अधिक मतदाता हैं। पश्चिम बंगाल में 16 जिलों में 167 महिलाओं सहित कुल 1,478 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों के 152 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इनमें से 103 सामान्य, 34 अनुसूचित जाति और 15 अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्र हैं। निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। कुल 44,376 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें लगभग 3,000 सहायक बूथ शामिल हैं। इनमें से 5,600 से अधिक बूथ पूरी तरह से महिलाओं द्वारा और 2 बूथ दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। प्रत्येक बूथ से वेबकास्टिंग सुविधा उपलब्ध होगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
इस बीच पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने सप्तग्राम में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घुसपैठियों के वोट के जरिए सत्ता में आई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नादिया के कृष्णा नगर में रैली करेंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरिपाल में भाजपा के घुसपैठ के आरोपों का खंडन किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल भी प्रचार में जुटे हैं। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के दौरान 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की है। पश्चिम बंगाल में नकदी, शराब, नशीली दवाओं, कीमती धातुओं और मुफ्त उपहारों सहित 472 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई। तमिलनाडु में 599 करोड़ रुपए से अधिक जब्त किए गए। निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया। श्री खड़गे ने तमिलनाडु के चेन्नई में संवाददाता सम्मेलन में ये टिप्पणी की थी। आयोग ने श्री खड़गे को 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित हस्तक्षेप पर कड़ी टिप्पणी की। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि कोई भी मुख्यमंत्री जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को केवल केंद्र और राज्य के बीच का विवाद नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के कृत्य के रूप में देखा जाना चाहिए। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की आज पहली बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हुए उसके खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। संपूर्ण राष्ट्र हमले की पहली बरसी पर आज पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एयर चाइना ने आधिकारिक तौर पर कल से बीजिंग और दिल्ली के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू कर दी। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यूजिंग ने सोशल मीडिया पर कहा कि दोनों उड़ानें एयरबस A332 विमान से संचालित हुई और निर्धारित समय से पहले पहुंची। मिस्र के काहिरा में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय युवा निशानेबाजों ने आज 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में राजचंद्रा ने रजत पदक और अभिनव देशवाल ने कांस्य पदक जीता। लखनऊ में IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने लखनऊ को 160 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।